चलो बाहर चलें, उसकी पत्नी ने सहमी सी आवाज में कहा। बाड़े वाले से पूछें, मुझे यहाँ डर लगता है। मगर नत्थू से पकड़े रहा और जड़ सा खाट पर बैठा रहा। थोड़ी देर बाद बढ़ते शोर में एक और आवाज बहुत से कंठों में से एक साथ फूट कर आई, हर हर महादेव। अंतिम शब्द बहुत लंबा करके बोला गया था। इस बढ़ते शोर और बराबर बजते हुए घड़ियाल के बीच बार बार ये ऊंची आवाजें सुनाई देने लगी थीं। लगता जैसे कोई बहुत बड़ा पर्व मनाया जाने लगा है। आखिर नत्थू की पत्नी से न रहा गया, वह नत्थू से बाजू छुड़ाकर उठी और दरवाजा खोलकर बाहर चली गई। नत्थू अभी भी फटी फटी आंखों से छत की ओर देखे जा रहा था। यही शोर एक अस्फुट सी स्वर लहरी बनकर शहर के बाहर दूर रिचर्ड के बंगले की दीवारों के साथ भी टकराने लगा था। इस गहराती गूंज में कुछ देर बाद घड़ियाल की टुन टुन भी तैरती हुई आने लगी। रिचर्ड उस समय गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन लीजा उसे सुनकर जाग गई थी। आवाज़ को सुनकर पहले तो लीजा को लगा जैसे उसी के कमरे में लगी घंटी धीमे धीमे टुन टुनाने लगी है, जैसे दिन के वक्त हवा का झोंका आने पर टुनटुनाती थी। पर जब उसकी नींद पूरी तरह से टूटी तो उसे लगा जैसे यह आवाज़ भिन्न है। किसी किसी वक्त यह आवाज़ बिल्कुल हवा में खो जाती, लगता जैसे हवा उठा कर ले गई है। फिर सहसा बज उठती, अंधकार की बीहड़ दूरियों में से तैरती हुई सी आ जाती है। लीजा की आंखों में नींद भरी थी। उसे किसी किसी वक्त लगता जैसे तूफान में सागर की लहरों से जूझते अपना रास्ता खोजते किसी जहाज की घंटी बज रही हो। उसने कोहनियों के बल उठकर रिचर्ड की ओर देखा। रिचर्ड हल्के हल्के खर्राटे भर रहा था। रिचर्ड के चरित्र की ही खूबी कहिए कि तकिए पर सिर रखते ही सो जाता था। निर्लिप्त निर्विकार पलंग पर लेटते ही वह गहरी नींद में खो जाता था। लीजा के लिए कमरे का अंधेरा बोझिल हो रहा था। गेट पर पहरेदार के बूट चलते सड़कों को पीटते सुनाई दे रहे थे। यह क्या आवाज़ है रिचर्ड? और लीजा उसके पास सट गई। ऐं क्या है? रिचर्ड जाग गया। यह क्या आवाज़ है? कुछ नहीं, सो जाओ। और रिचर्ड ने करवट बदल ली, पर लीजा ने अपनी बाँह उसके गले में डाल दी। कहीं कोई घड़ियाल सा बज रहा है रिचर्ड, लीजा ने कहा, जैसे किसी गिरजे की घंटी हो। रिचर्ड जाग गया। उसने ध्यान से सुना और कोहनियों के बल उठ बैठा। गिरजे की घंटी की आवाज़ ज़्यादा गहरी होती है। यह मंदिर की घंटी जैसी आवाज़ है, हिंदुओं के मंदिर की घंटी जैसी। यह इस वक्त क्यों बज रही है रिचर्ड? क्या हिंदुओं का कोई बड़ा दिन है? इस घड़ियाल को सुनते हुए लगता है जैसे समुद्र में तूफान उठा हो और कोई जहाज़ खतरे की घंटी बजा रहा हो। रिचर्ड चुप रहा। शहर की ओर से आने वाला भिनभिनाता सा शोर उत्तरोत्तर बढ़ रहा था। कभी कभी कोई आवाज़ इस भिनभिनाते शोर में से ऊपर उठ जाती, जैसे कोई किसी को बुला रहा हो, फिर उसी शोर के सागर में डूब जाती। तभी अंधकार की लहरों पर तैरती हुई एक और आवाज़ आई, अल्लाहु अकबर। रिचर्ड का सारा शरीर एक बार तन गया, फिर थोड़ी देर में ही ढीला भी पड़ गया। क्या आवाज़ है? यह क्या आवाज़ है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है गॉड इज ग्रेट। यह आवाज़ इस वक्त क्यों उठाई जा रही है? जरूर कोई धार्मिक पर्व होगा। रिचर्ड मन ही मन हंस दिया। यह धार्मिक पर्व नहीं है लीजा, दरअसल शहर में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच फसाद हो गया है। तुम्हारे रहते फसाद हो गया रिचर्ड? रिचर्ड को लगा जैसे सब कुछ जानते बूझते हुए लीजा यह अटपटा सवाल कर रही है। हम इनके धार्मिक झगड़ों में दखल नहीं देते लीजा, तुम जानती तो हो। क्षण भर के लिए लीजा को लगा जैसे वह किसी भयानक जंगल से चारों ओर से घिरी है और दूर से आने वाली आवाज़ें जैसे जंगल की ही आवाज़ें हैं, सियारों, गीदड़ों और तरह तरह के जंतुओं की आवाज़ें। तुमने इसे बंद क्यों नहीं करवा दिया रिचर्ड? यहाँ मुझे डर लगता है। रिचर्ड चुप रहा, कोहनियों के बल बैठा रहा। उसका मस्तिष्क फिर से बड़ी तेजी से सोचने लगा था कि इस स्थिति में मुझे क्या करना होगा, सरकार की नीति को किस भांति क्रियान्वित करना होगा। लीजा ने अपनी बाहें उसके गले में डाल दी थी। ये लोग लड़ेंगे तो तुम्हारी जान को भी तो खतरा है रिचर्ड, लीजा ने कहा और उसका दिल रिचर्ड के प्रति सहानुभूति से भर उठा। दुबला पतला रिचर्ड बर्बर लोगों के बीच अकेला घूम रहा है, ऐसे लोगों पर शासन क्या कोई आसान काम है? बीच बीच में अंधकार की गुफाओं में से निकलती हुई घड़ियाल की टन टन की आवाज़ सुनाई दे जाती। ये लोग आपस में लड़ें, क्या यह अच्छी बात है? रिचर्ड हंस दिया। क्या यह अच्छी बात होगी कि ये लोग मिलकर मेरे खिलाफ लड़ें, मेरा खून करें? रिचर्ड ने कहा और करवट बदलकर एक हाथ से लीजा के बाल सहलाने लगा। कैसा रहे अगर इस वक्त ये आवाज़ें मेरे घर के बाहर उठ रही हों और ये लोग मेरा खून बहाने के लिए संगीने उठाए बाहर खड़े हों? लीजा सिर से पांव तक कांप उठी। वह रिचर्ड के और पास आ गई और अंधेरे में उसके चेहरे की ओर देखती रह गई। उसे लगा जैसे मानवीय मूल्यों का कोई महत्व नहीं होता, वास्तव में महत्व केवल शासकीय मूल्यों का होता है। इतने में रिचर्ड फिर उठकर बैठ गया। शहर में गड़बड़ है लीजा, तुम सो जाओ, मुझे मालूम करना होगा। तभी टेलीफोन की घंटी बज उठी। अध्याय 9। ऐसा बेवाका घर है, कोई चीज एक बार कहीं रख दो फिर मिलती ही नहीं, ढूंढ ढूंढ मरो उसे। लाला लक्ष्मी नारायण आलमारी के सामने खड़े बड़बड़ा रहे थे। आलमारी के निचले खाने में कपड़ों के नीचे उन्होंने एक नन्ही सी कुल्हाड़ी रख छोड़ी थी जो इस समय नहीं मिल रही थी, और उधर शहर में गड़बड़ शुरू हो गई थी। दो बार वह कोठरी में से बाहर घरवाली से पूछने जा चुके थे कि तुमने तो कुल्हाड़ी नहीं देखी, और दोनों ही बार पत्नी ने एक सवाल के दो जवाब दिए थे। देखो जी, दातुन मैं नहीं करती, जो मुझे कुल्हाड़ी से दातुन के लिए कीकर काटनी हो। लकड़ियां मैं नहीं फाड़ती कि मुझे कुल्हाड़ी की जरूरत होगी, आप क्यों बार बार मुझसे पूछते हैं? अब पूछना भी गुनाह है, कुल्हाड़ी न मिले तो तुमसे न पूछूं तो किससे पूछूं? तूने कुल्हाड़ी देखी है नानकू? उन्होंने नौकर को बुलाकर पूछा। यहीं पर थी पिताजी, पर मैंने नहीं देखी, घर में थी तो अब पंख लगाकर उड़ गई। तू मुझे चराता है, तुझे भी नहीं मालूम तो कहाँ गई कुल्हाड़ी? मैंने नहीं देखी पिताजी, नानकू दहलीज पर खड़ा था। अंतरंग सभा की मीटिंग में उसकी रोज प्रातः जब शहर की स्थिति पर बहस हो रही थी तो उन्हें हिंदू जात की सामूहिक रक्षा का ख्याल बार बार आता रहा था। लड़कों को लाठी चलाना सिखाओ, इस काम में एक दिन की भी देरी नहीं करो, मैं इस काम के लिए 500 रुपये दूंगा, लाला जी ने कहा था, और देखते ही देखते उनके प्रेरणा से 2,500 रुपये इकट्ठे हो गए थे। पर उस समय उन्हें शत्रु से लोहा लेने, उसे नीचा दिखाने की धुन थी। अपने को वह सुरक्षित समझते थे और वास्तव में वह थे भी सुरक्षित। पैसे वाले जाने माने व्यक्ति थे, ऊंचे मकान में रहते थे, किसका हाथ उन पर उठ सकता था? आसपास मुसलमान लोग रहते थे, लेकिन सभी छोटे तबके के थे। शहर के अनेक मुसलमान व्यापारियों के साथ लाला जी व्यापार करते थे, उनके साथ भी रख रखाव था, फिर डर किस बात का था? पर आग लग जाने पर शहर का माहौल बदल गया था, और सब कुछ जानते समझते हुए भी उनका दिल डूबने लगा था। सुनती हो, मुझे लगता है होनहार कुल्हाड़ी को युवक समाज में दे आया है। तुम जानो और तुम्हारा बेटा जाने, मुझे तो तुम लोग बेवकूफ समझते हो, मैं तुम्हारी बातों में पढ़ूं ही क्यों? तुम्हें कुछ कहकर गया है? कौन कौन? क्या रणबीर और कौन? मुझे कुछ नहीं कहा गया, तुम्हारे ही उपदेश दिन भर सुनता रहता है, अब मैं क्या जानू कहाँ गया है। इस परलो की रात में बेटा घर पर नहीं है। मुंडे पर से लाला जी ने झांक कर नीचे देखा तो पड़ोस वालों की छत पर 3 आदमी खड़े थे। तीनों का मुंह आग की ओर था। फतेहद्दीन और उसका भाई और उनका बूढ़ा बाप खड़े थे। फतेहद्दीन की नज़र आसमान की लाली को देखती हुई पिछवाड़े की ओर मुड़ गई तो उसे लाला जी खड़े नजर आए। कैसा कहर टूटा है बाबूजी, उफो, कैसी बुरी आग लगी है, उसने कहा। लाला जी ने कोई जवाब नहीं दिया, पर फतेहद्दीन ने आश्वासन के लहजे में कहा, बेखबर रहो बाबूजी, आपके घर की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता, पहले हम पर कोई हाथ उठाएगा फिर आप पर उठने देंगे। क्यों नहीं क्यों नहीं, पड़ोसी तो इंसान के बाजू होते हैं, और फिर आप जैसे पड़ोसी। आप बेफिक्र रहें, ये फसादी लोग फसाद करते हैं, शरीफों को परेशान करते हैं, यहाँ सभी को एक ही शहर में रहना है, फिर लड़ाई झगड़ा किस बात का? क्यों बाबूजी? बेशक बेशक। लाला जी को फतेहद्दीन की बात पर विश्वास था भी और नहीं भी था, 20 बरस यहाँ रहते ही हो गए थे। इन लोगों ने उन्हें कभी शिकायत नहीं हुई थी, पर आखिर थे तो मुसलमान, यों डरने की ऐसी कोई बात नहीं थी। अगर किसी ने मेरे घर को आग लगाई तो मेरा तो केवल एक घर जलेगा, मुसलमानों का सारा मोहल्ला जलेगा। फिर सुबह हयात बख्श ने, जो मुस्लिम लीग का प्रधान था, यकीन दिलाया था कि उसके रहते कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। गोदाम के बारे में भी उन्हें विशेष चिंता नहीं थी। गोदाम के सारे माल का बीमा हो चुका था, फिर भी हालत बिगड़ते देर नहीं लगती और इन मुसलों का एतबार नहीं किया जा सकता। उन्हें चिंता थी तो केवल रणबीर की, जो इस वक्त घर नहीं था, जो शीला लड़का है कहीं कोई भूल नहीं कर बैठे। यूं तो मास्टर देवव्रत ने ही उसे गड़बड़ देखकर रोक लिया था। शाम के वक्त रणबीर का एक मित्र कह भी गया था कि सभी लड़के मास्टर जी के पास हैं, पर क्या मालूम उसने मंडी का रुख कर दिया हो। तभी उनके कानों में घड़ियाल की आवाज़ आई, सुनकर उन्हें संतोष हुआ। अंतरंग सभा की बैठक में उन्हीं ने सुझाव दिया था कि खतरे की घंटी को ठीक करवा लिया जाए और उसमें नई रस्सी डलवा ली जाए। उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि उनके सुझाव को अमली जामा पहना दिया गया है। पर दूसरे ही क्षण आग के इन बवंडरों के बीच घड़ियाल का बजना उन्हें बेमानी और निरर्थक सा लगा। इधर खतरे की घंटी बज रही है, उधर मंडी जल रही है, हिंदुओं का लाखों का नुकसान हो रहा है। हम हिंदुओं को इसी चीज ने मारा है, और किसने मारा है? वह बड़बड़ाए। वह पीठ पीछे दोनों हाथ बांधे टहल रहे थे और बड़बड़ाते जा रहे थे। किसी किसी वक्त उनका दिल डूबने लगता। घर में जवान बेटी थी, अगर इस तरफ गड़बड़ हो गई तो मैं इन्हें कहाँ संभालूंगा, और न जाने रणबीर कहाँ घूम रहा है। बड़ा बेबाका लड़का है, किसी की नहीं सुनता, समाज सेवा रट लगाए रहता है। जिसे अपने माँ बाप की चिंता नहीं, वह समाज सेवा क्या करेगा? कभी कभी उन्हें लगता जैसे रणबीर ने अनाज मंडी का रुख कर लिया है जहाँ आग लगी है, और यह विचार मन में आते ही उनके सारे बदन में सिहरन सी दौड़ जाती। और लोगों के भी बेटे हैं, वे भी मंडली में जाते हैं, लाठी चलाना सीखते हैं, पर यह नहीं कि खतरे के वक्त घर के बाहर घूम रहे हों। बड़ा वीर सैनिक बना फिरता है। उन्हें अपने पर क्रोध आया। मीटिंग में और लोग चुप बने रहते हैं जबकि मैं बोलता रहता हूँ। 500 रुपया भी मुझसे निकलवा लिया और किसी ने 100 से ज़्यादा नहीं दिया। मुझ पर अगर ऐसी वैसी कोई बात हुई तो कोई भड़वा नज़दीक नहीं आएगा। यहाँ मुसलमानों के मोहल्ले में मेरी मदद करने कौन आएगा? मुंडेर के पास खड़े होकर लाला जी ने घर के अंदर झांक कर देखा। नीचे गुप्त अंधेरा था। जंगले के पास बेटी चुपचाप खाट के पायताने माँ से सटकर बैठी थी। हरि का नाम लो, माँ कह रही थी, हरि का नाम लो, गायत्री का जाप करो। और बेटी गोद में हाथ रखे गायत्री मंत्र का पाठ करने लगी। ऊपर से लाला जी ने धीमी आवाज में पूछा, रणबीर आया है? क्यों रणबीर की माँ, रणबीर आ गया? नहीं जी, अभी कहाँ आया है, कोई नहीं आया। अच्छा, धीरे बोल, तुझसे धीरे नहीं बोला जाता। लाला जी फिर छत पर टहलने लगे, बार बार मन को हौसला देते, मेरे घर को आग लगाएंगे तो इनकी सारी गली जलेगी। पर आखिर उनसे न रहा गया, बड़बड़ाते हुए सीढ़ियां उतर आए। पर परिवार के सामने पहुंचे तो उनका रुख बदल गया। इस तरह गुमसुम होकर क्यों बैठी हो रणबीर की माँ? घबराने की क्या बात है, हिम्मत से काम लो। माँ चुप रही, उसका दिल भी रणबीर के बारे में धक धक कर रहा था। मन ही मन वह भी व्याकुल थी। हमें हिम्मत से काम लेने को कह रहे हैं, स्वयं 3 बार शौच हो आए हैं, माँ ने धीरे से बुदबुदाकर कहा। लाला जी जंगले के पास से हटकर कमरे की ओर चले गए। थोड़ी देर बाद माँ को खटका सा हुआ। विद्या जा देख तो, तेरे पिताजी क्या करने गए हैं? विद्या उन्हीं कदमों उठकर पिताजी के कमरे की ओर गई। लाला जी अपनी 2.5 गज धोती उतारकर पायजामा पहन रहे थे। विद्या उन्हीं कदमों माँ के पास लौट आई। वह तो कहीं बाहर जा रहे हैं, विद्या ने घबराई हुई आवाज में कहा। हे भगवान, इनका कुछ पता नहीं चलता। और माँ खाट पर से उतरकर सीधे अपने पति के कमरे में जा पहुंची। देखो जी, मेरा गड़ा मुर्दा देखोगे अगर घर के बाहर कदम रखोगे। तो क्या करूं, उसकी भी सुध लूं या घर पर बैठा रहूं? अपनी जवान बेटी को मेरे पास अकेली छोड़कर चले जाओगे? देखो तो कैसा कहर का वक्त आया है, माँ ने उत्तेजित आवाज में कहा। बेटा बाहर गया हो और मैं चूड़ियां पहनकर घर बैठा रहूं? कुछ होश की बात कर। बेटा तुम्हारा है तो मेरा भी है, इस वक्त उसे ढूंढने जाओगे तो कहाँ जाओगे? स्कूल बंद पड़ा होगा, मंदिर में से लोग कब के जा चुके होंगे, उसे कहाँ खोजते फिरोगे? समझदार लड़का है, जरूर कहीं रुक गया होगा। शाम को उसका दोस्त भी बोल गया था कि सभी लड़के मास्टर जी के घर में हैं। मैं कितना कहती थी, कोई जरूरत नहीं बच्चे को आर्यवीर बनाने का, या पढ़े लिखे खाएं पिए, मगर नहीं, तुमने मेरी एक नहीं सुनी। उसके कवायदे करवाते रहे, लाठी चलाना सिखवाते रहे। मुसलमानों का शहर है, सारी उम्र हमें इन्हीं के साथ रहना है। समंदर में रहकर मगर से बैर, कहाँ की अकलमंदी है? अब देख लो क्या हो रहा है। बहुत उपदेश नहीं दिया कर, क्या बुरा किया है जो वह युवक समाज में जाने लगा है? तो देश और समाज का काम करना ही चाहिए, करो फिर देश और समाज का काम और भुगतो। पर मैं तो इस वक्त बाहर नहीं जाने दूंगी, कुछ भी कर लो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। लाला जी ने बाहर जाने का इरादा स्थगित कर दिया। उन्हें इस बात की आशा नहीं थी कि आग इतनी ज़्यादा भड़क उठेगी। उन्हें मुसलमानों के खिलाफ गुस्सा तो अक्सर आया करता था, पर उन्हें इस बात का भी विश्वास था कि अंग्रेज़ उन्हें दबा कर रखेंगे। और लोग भी हैं, अफसरों के साथ, हमसायों के साथ, हिंदू मुसलमान सभी के साथ मेल मिलाप बनाए रखते हैं। अपने समाधियों को ही देखो, मुसलमानों का उनके घर तांता लगा रहता है। तुमने न अफसरों के साथ बनाकर रखी, न हमसायों के साथ। वास्तव में यह बात जैसे उनकी पत्नी ने उन्हीं के मुंह से छीन ली हो, क्योंकि ऐन उस वक्त वह भी इसी बात के बारे में सोच रहे थे। उनके समधी की गहरी दोस्ती शाहनवाज के साथ थी, और शाहनवाज बड़ा असर रसूख वाला मुसलमान था। उनकी मोटरें जगह जगह चलती थीं, उसका पेट्रोल का ठेका था, और लाला जी के समधी के साथ लुकमा तोड़ने जैसा रिश्ता था। सबसे अच्छा हो कि उसकी मदद से हम जैसे तैसे यहाँ से कुछ दिन के लिए निकल जाएं। आग भड़क उठी है तो जल्दी शांत नहीं होगी, और जाने क्या क्या गुल खिलाए। बेटी को लेकर सदर बाजार में कुछ दिन के लिए चले जाएं, पर यह कैसे संभव हो? मगर वह बार बार मकानों की छतों पर से दोहराया जाने लगा। मकानों की छतों पर चढ़े हुए आग का तमाशा देखने वाले लोग भी उसे दोहराने लगे। एक शोर सा मचने लगा, दूर शिवालय की ओर से हिंदू नारों की भी आवाज़ आती, लेकिन बहुत कम और बहुत धीमी सी। आसपास कहीं भी उसे दोहराया नहीं जा रहा था। इससे लाला जी और भी ज़्यादा त्रस्त हो उठे। सुनो रणबीर की माँ, तुम नानकू को ऊपर बुलाओ। क्यों, क्या बात है? हर बात के साथ क्यों नहीं लगाया करो? तुम उसे बुलाओ, मैं उसके हाथ एक चिट्ठी लिखकर भेजना चाहता हूँ। पत्नी लाला जी के चेहरे की ओर देखती रह गई। इस वक्त इसे भेजोगे? कहाँ भेजना चाहते हो? पत्नी का मन रणबीर की दिशा में दौड़ रहा था। यह रणबीर का पता लगाएगा? मास्टर ने आपको काला जो भेजा है कि रणबीर उसके साथ है, अब क्यों परेशान होते हो? भगवान पर विश्वास रखो और सुबह तक चुपचाप बैठे रहो। नहीं, रणबीर के पीछे मैं इसे नहीं भेजना चाहता, मेरा एक दूसरा काम है। देखो जी, इस गरीब को कहाँ भेजोगे? बाहर कहर टूट रहा है, इसे कोई जानता नहीं, पहचानता नहीं। तू हर बात में टांग क्यों अड़ाती है? मैं नहीं चाहता कि विद्या को लेकर हम यहाँ पड़े रहें, कुछ भी हो सकता है। मैं समधी को खत लिख रहा हूँ कि अपने दोस्त शाहनवाज से कहकर हमें यहाँ से निकाल लें। जवान बेटी घर में है और मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। यह काम भी तो कल सवेरे ही हो सकता है ना? इस वक्त तो नहीं हो सकता। क्या समधी तुम्हारी चिट्ठी पाकर शाहनवाज के घर जाएगा? तुम भी कैसी बातें करते हो जी। पर लाला जी ने नहीं माना। एक बात उनके दिमाग में बैठ जाए तो निकलती नहीं। पत्नी बुदबुदाई, फिर ऊंची आवाज में बोली, यह कहाँ तुम्हारी चिट्ठी पहुंचाएगा? यह कुछ नहीं जानता। क्यों नहीं पहुंचाएगा? इसे रखा किस लिए है? गलियों के रास्ते 2 मिनट में समधियों के घर पहुंच जाएगा, पास ही तो है। तुम क्यों इतनी जिद पकड़ लेते हो जी? यहाँ से निकालोगे भी तो दिन को ही निकालोगे। इस वक्त किसी को लिखने से क्या लाभ? समधियों को भी परेशान करोगे। लाला जी छड़बड़ के लिए ठिठक खड़े रहे, फिर धीमी आवाज में बोले, अगर हो सके तो आज रात ही निकल जाना चाहता हूँ। ऐसी भी क्या बात है जी? तुम्हें हमसायों से डर लगता है? मुझे नहीं लगता। भगवान का नाम लो और चुपचाप बैठे रहो, पत्नी ने कहा, पर इसके बाद चुप हो गई। कोई कारण रहा होगा जो यह इतने उतावले हो रहे हैं। नानकू के लिए जोखिम था, पर जवान बेटी का ख्याल आते ही माँ की स्थिरता भी डोल गई। क्या मालूम इसी समय यहाँ से निकल जाने में भला हो। भगवान न करे अगर कुछ हो गया तो मैं इसे कहाँ छिपाती फिरूंगी। इसे कहो मसहरी का डंडा साथ लेता जाए। लाला जी ने नानकू के प्रति सद्भावना व्यक्त करते हुए कहा। चिट्ठी देकर लाला जी देर तक नानकू को समझाते रहे। अगर देखो किसी गली में शोर है तो दूसरी गली में मुड़ जाना, हो सके तो मंदिर में से चपरासी को साथ ले लेना। अब जाओ, देरी नहीं करो, जैसे भी हो खत पहुंचा कर आना। पर उसके जाने से पहले पत्नी फिर एक बार बिफर कर बोली, देखो जी, भगवान के सहारे आज रात पड़े रहो, कल जो होगा देखा जाएगा। यह अभी किसी माँ का बेटा है, क्यों इसे जलती आग में धकेलते हो? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं जा सकता हूँ तो यह नहीं जा सकता, इसके हाथों पर मेहंदी लगी है। पर तभी पिछली गली में किसी के भागते कदमों की आवाज़ आई। आवाज़ नज़दीक आ रही थी और क्षण प्रतिक्षण ऊंची होती जा रही थी। उसी रात गली में चलते कदमों की हर आवाज़ ऊंची होती गई थी और कानों के साथ साथ सीधे दिल पर बजती थी। लाला जी चलते चलते रुक गए। उनकी टांगों में जैसे पानी भर गया था। दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या रणवीर कहीं से भाग कर आ रहा है? भागते कदमों की आहट से कौन किसी को पहचान सकता है? सहसा किसी दूसरे व्यक्ति के भागते कदमों की भी आवाज़ आने लगी। लगा जैसे कोई आदमी गली का मोड़ काट कर गली के अंदर आ गया है और भागते व्यक्ति के पीछे पीछे भागने लगा है। फिर सहसा अंधेरे को चीरती हुई आवाज़ आई, बचाओ बचाओ। लाला जी का शरीर सिर से पांव तक सिहर उठा। गली के पिछले हिस्से में अब एक नहीं दो तीन भागते व्यक्तियों के कदमों की आवाज़ आ रही थी। ये आवाज़ें खाट पर बैठी माँ और उसकी बेटी ने भी सुनी। पास पड़ोस के घरों की छतों पर खड़े लोगों ने भी सुनी। वे सारे वातावरण में जैसे गूंज रही थी, बचाओ। फिर आवाज़ आई, चीखती सी आवाज़ थी, किसी बदहवास डरे हुए आदमी की आवाज़। इस आवाज़ से भी उनके अपने बेटे की आवाज़ को पहचान पाना नामुमकिन था। भयाकुल भागते हुए लोग सभी एक जैसी ये आवाज़ से पुकारते हैं। गली में किसी चीज़ के फेंकने की आवाज़ आई। कोई लाठी थी या पत्थर था। किसी ने शायद भागते आदमी के पीछे लाठी फेंकी थी या शायद कुल्हाड़ी फेंकी थी, जो नज़दीक ही दीवार के साथ टकराई थी और फिर गली के फर्श के साथ टकराकर फटफटाती सी आगे चली गई थी। पकड़ो, मारो मारो मारो। फिर बचाव की पुकार करने वाला व्यक्ति हांफता हुआ पैर फटफटाता गली लांघ गया था और गली लांघते ही उसके कदमों की आवाज दूर हो गई थी, धीमी पड़ गई थी, जबकि उसका पीछा करने वाले कदमों की आवाज ऊंची होती जा रही थी। क्या लाठी उसे लगी नहीं थी? क्या रणवीर पर किसी ने लाठी फेंकी थी? क्या रणवीर बचकर आ गया है? क्या वह अभी दरवाजा खटखटाएगा? पीछा करने वाले कदम गली से बाहर चले गए थे। लाला जी का दिल धक धक किए जा रहा था। उनके कान दरवाजे पर लगे थे कि अभी कोई दरवाजा खटखटाएगा, पर किसी ने दरवाजा नहीं खटखटाया। लाला जी के पैरों में गति आई। वह चलते हुए छज्जे पर गए ताकि सड़क पर से इन भागते लोगों को देखें। सड़क सुनसान पड़ी थी। सामने कच्चे घर की छत पर औरतें, मर्द और बच्चे खड़े थे। उन्होंने भी ये आवाज़ें सुनी होंगी। सभी निश्चेष्ट से खड़े थे। तभी लगभग छज्जे के नीचे तीन आदमी सड़क पर से गली की ओर लौटते नजर आए। तीनों ने मुश्कें बांध रखी थीं। तीनों जोर जोर से सांस ले रहे थे और तीनों के हाथ में लाठियां थीं। निकल गया सिखड़ा, जो भागता नहीं तो हम उसका पीछा भी नहीं करते, उनमें से एक कह रहा था। और उनके कदम गली के अंदर मुड़ गए और धीरे धीरे दूर होने लगे। लाला जी ने चैन की सांस ली और फिर से पीठ पीछे हाथ बांधे कमरे में टहलने लगे। नानकू ने भी मसहरी का डंडा उठाया और सीढ़ियां उतरकर दरवाजे के पीछे जा बैठा। अध्याय 10। दिन के उजाले में शहर अधमरा सा पड़ा था, मानो उसे सांप सूंघ गया हो। मंडी अभी भी जल रही थी। म्यूनिसिपैलिटी के फायर ब्रिगेड ने उसके साथ जूझना कब का छोड़ दिया था। उसमें से उठने वाले धुएं से आसमान में कालिमा कूत रही थी, जबकि रात के वक्त आसमान लाल हो रहा था। 70 दुकानें जलकर राख हो चुकी थीं। दुकानें बंद थीं, दूध दही की दुकानें कहीं कहीं खुली थीं और उनके निकट दो दो चार चार आदमी खड़े रात की घटनाओं के बारे में कयास लगा रहे थे। मार काट के बारे में अफवाहें ज्यादा थीं। गवाल मंडी वाले कहते रत्ता में दंगा हुआ है, रत्ता वाले कहते कमेटी मोहल्ले में दंगा हुआ है। नया मोहल्ला के चौक में एक घोड़ा मरा हुआ पाया गया था। शहर के बाहर गांव को जाने वाली सड़क पर एक अधेड़ उम्र के आदमी की लाश मिली थी। कालीज रोड पर जूतों की एक दुकान और साथ में बैठने वाले दर्जी की दुकान लूट ली गई थी। एक और लाश शहर के सिरे पर एक कब्रिस्तान में मिली थी। लाश किसी अधेड़ उम्र के हिंदू की थी और उसकी जेब में से कुछ रेजगारी और दहेज के कपड़ों की एक फहरिस्त मिली थी। मोहल्लों के बीच लिंकें खींच गई थी। हिंदुओं के मोहल्ले में मुसलमान को जाने की अब हिम्मत नहीं थी और मुसलमानों के मोहल्ले में हिंदू सिख अब नहीं आ जा सकते थे। आंखों में संशय और भय उतर आए थे। गलियों के सिरे पर और सड़कों के नाकों पर जगह जगह कुछ लोग हाथों में लाठियां और भाले लिए और मुश्के बांधे छिपे बैठे थे। जहाँ कई हिंदू और मुसलमान पड़ोसी एक दूसरे के पास खड़े थे, बार बार एक ही वाक्य दोहरा रहे थे, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ है। इससे आगे वार्तालाप बढ़ ही नहीं पाता था। वातावरण में जड़ता सी आ गई थी। सभी लोग मन ही मन जानते थे कि यह कांड यहीं पर खत्म होने वाला नहीं है, लेकिन आगे क्या होगा किसी को मालूम नहीं था। घरों के दरवाजे बंद थे, शहर का कारोबार, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर सभी ठप हो गए थे। सड़क पर चलते आदमी को सारा वक्त इस बात का भास बना रहा था कि खिड़कियों के पीछे मकानों की अंधेरी ड्योढ़ियों, दरारों, छिद्रों में से उस पर आंखें लगी हैं, उसका पीछा किए जा रही है। लोग अपने अपने मोहल्लों में बंद हो गए थे, केवल उड़ती अफवाहों के बल पर एक दूसरे से संपर्क रखे हुए थे। खाते पीते घरों के लोग अपने अपने बचाव में उलझ गए थे। सार्वजनिक काम ठप हो गए थे। कांग्रेस की प्रभात फेरी और तामीरी काम और सभी काम एक दिन में खत्म हो गए थे। फिर भी सुबह सवेरे हसबे मामूल जर्नैल जैसे तैसे सड़कें लांघता कांग्रेस के दफ्तर के सामने पहुंच गया था। वहाँ पर ताला चढ़ा देखकर वह पाँव फटने तक साथियों का इंतजार करता रहा और जब वे नहीं आए तो नाली के ऊपर बने चबूतरे पर खड़ा होकर उसने छोटी सी तकरीर की और वहाँ से रवाना हो गया। आज प्रभात फेरी नहीं होगी। मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ और दरख्वास्त करता हूँ कि आप सब शहर में अमक बनाए रहें। यह सब शरारत अंग्रेज की है जो भाई भाई को आपस में लड़ाता है। जय हिंद। और वह चबूतरे पर से उतरकर लेफ्ट राइट करता अंधेरे में खो गया था। उधर रणवीर रात को घर नहीं लौटा था, लेकिन जैसे तैसे मास्टर देवव्रत ने उसके कुशल क्षेम की खबर लाला लक्ष्मी नारायण को भिजवा दी थी। दूसरे लाला जी भी सोच ही रहे थे कि क्या करें, कहाँ जाएं, कि शाहनवाज स्वयं पहुँच गया था। ऊंचा लंबा रोबीला शाहनवाज, वह अपनी गहरे नीले रंग की ब्यूक गाड़ी लेकर आया था। शाहनवाज के साथ लालाजी की जान पहचान तो थी पर बेत तक कुल्फी नहीं थी। देखते ही देखते लालाजी, उनकी पत्नी और बेटी उसी मोटर में बैठकर मोहल्ले में से निकल गए थे। नानकू अकेला मकान की हिफाजत के लिए पीछे छोड़ दिया गया था। मुस्तैदी से चौकीदारी करना, सोए नहीं रहना नानकू, सारा घर तुम पर छोड़कर जा रहे हैं। और मोटर रवाना हो गई थी। नीली ब्यूक गाड़ी सुनसान सड़कों पर बलखाती चली जा रही थी। जगह जगह रास्ते पर खड़े लोगों की नज़र उन पर जाती थी। सभी देखते थे कि अगली सीट पर ड्राइवर की जगह तुर्रेदार पगड़ी पहने शाहनवाज बैठा था। दोस्तों का दोस्त, चिट्टा दमकता चेहरा, और उसकी बगल में लाला लक्ष्मी नारायण बैठे हैं और पीछे जनानी सवारियाँ बैठी हैं। यूँ निकल कर जाना बड़ी हिम्मत की बात थी। और जब कहीं सड़क पर लोगों की गांठ नज़र आती, लालाजी दूसरी ओर देखने लगते थे, जबकि पिछली सीट पर बैठी लालाजी की पत्नी शाहनवाज को असीसें दे रही थी। ऐसे लोगों के दिल में भगवान बसता है जो मुसीबत में लोगों का हाथ पकड़ते हैं। और अब ब्यूक गाड़ी लालाजी उनके परिवार को सदर बाजार में उनके किसी संबंधी के घर छोड़ देने के बाद फिर से शहर की सड़कों पर बढ़ती चली जा रही थी। अब शाहनवाज सीधे अपने जिगरी दोस्त रघुनाथ के डेरे पर जा रहा था, पर शाहनवाज को अपने बचाव की कोई चिंता नहीं थी। उसकी ब्यूक मोटर सभी जगह जाती थी। मोटर अब बड़ी सड़क पर आ गई थी। इलाका खुल गया था। सड़कें चौड़ी थीं और आसपास के घर सड़कों से काफ़ी दूरी पर थे। इलाका मुसलमानी था और मोटर धीमी रफ्तार से चली जा रही थी। भावड़ खाने की ओर जाने वाली सड़क के सिरे पर मौलादाद खड़ा था। पीछे एक दुकान के चबूतरे पर 5-7 आदमी मुश्के बांधे और लाठियाँ और भाले हाथ में लिए बैठे थे। मौलादाद आज भी अपनी निराली पोशाक में था, खाकी रंग की बिरजिस, गले में हरे रंग का रेशमी रुमाल। शाहनवाज की मोटर को आता देखकर आगे बढ़ आया था। क्या खबर है? शाहनवाज ने मोटर खड़ी करते हुए पूछा। क्या खबर है खान जी? उधर पिछले मोहल्ले में काफिरों ने एक गरीब मुसलमान को मार डाला है, कहते हुए मौलादाद के होठों पर गुस्से से झाग आ गया। मौलादाद की नज़र में गुस्सा था, मानो वह कह रहा हो तुम तो खान जी काफिरों से बगलगीर होते हो, उनके साथ उठते बैठते हो जबकि मुसलमान मर रहे हैं। पर वह कुछ बोला नहीं। मौलाना जानता था कि उसकी पहुंच उस जगह तक नहीं जा सकती जिस जगह तक शाहनवाज की पहुंच जा सकती है। शाहनवाज का उठना बैठना डिप्टी कमिश्नर तक से था, शहर के रईसों तक था, जबकि मौलादात कमेटी के आसपास ही बरसों से चक्कर काट रहा था। पांच काफिर हमने भी काटे हैं, इनकी माँ की। शाहनवाज ने सुना अनसुना कर दिया और मोटर चला दी। वह थोड़ी दूर ही आगे गया था जब दाई ओर एक गली में से सहसा बहुत से लोग नमूदार हुए। सिर पर कुल्ला, सफेद कमीज और सलवार, लोगों के पैरों की हल्की हल्की आहट हवा को जैसे थपकियां देती जा रही थी। शाहनवाज समझ गया था कि वह उसी मुसलमान की मैयत होगी। जनाजे के पीछे दो छोटे छोटे लड़के भी जा रहे थे जो जरूर उसके बेटे रहे होंगे। थोड़ी देर बाद सड़क साफ हो गई थी। शाहनवाज ने गाड़ी फिर चला दी। फाटक लांघ कर शाहनवाज ने मोटर पेड़ के नीचे खड़ी कर दी और चाबी झुलाता बंगले की ओर बढ़ने लगा। पर्दे के पीछे खिड़की के पास रघुनाथ की पत्नी ने उसे सबसे पहले देखा और उसे पहचानते ही उसे हार्दिक खुशी हुई। ओ कराड़, खोल दरवाजा, बाहर से आवाज आई। रघुनाथ की पत्नी लपक कर बाथरूम की ओर गई। शाहनवाज तुमसे मिलने आया है, उसने दरवाजे के बाहर पति को संबोधन करते हुए कहा। मैं उसे बिठलाती हूँ, तुम आओ। दरवाजा खुलने से पहले ही शाहनवाज फिर से बोलने लगा था। ओ याबू, बंगले में रहने लगा है तो दरवाजा ही नहीं खोलता। फिर भाभी को सामने खड़ा देखकर अचकचा गया। भाभी सलाम, किधर है मेरा यार, उसने कहा और बैठने वाले कमरे में दाखिल हो गया। रघुनाथ की पत्नी ने बताया कि रघुनाथ बाथरूम में था और वह शाहनवाज के निकट कुर्सी पर बैठ गई। यहाँ कैसा है भाभी, कोई तकलीफ तो नहीं? अच्छा किया वहां से निकल आए। अच्छा है, पर अपना घर तो अपना ही होता है, अब न जाने कभी उसमें जाना होगा या नहीं। कहते कहते उसकी आंखें भर आईं। शाहनवाज भी भाव को उठा। रो नहीं भाभी, अगर मैं जिंदा रहा तो तुम लोग जरूर फिर अपने घर में जाओगे, तू बेफिक्र रह। रघुनाथ की पत्नी शाहनवाज से पर्दा नहीं करती थी। उसके दोस्तों में से यही एक मुसलमान दोस्त था जिसके सामने वह बेझिझक आ जाती थी। रघुनाथ को इस बात का गर्व हुआ करता था कि उसका सबसे नज़दीकी दोस्त एक मुसलमान है। फातिमा को नहीं लाए? जब आते हो अकेले चले आते हो। शहर में गड़बड़ है भाभी, तुम क्या समझती हो मैं शहर को निकला हूँ? तुम आ सकते हो तो वह नहीं आ सकती, मोटर में वह अभी नहीं बैठ सकती। तभी रघुनाथ आ गया। ओ याबू, तुझे यहाँ भी टट्टियाँ लगी हैं? उधर से भाग के आया है काफिर और यहाँ भी टट्टियाँ करने लगा है। और दोनों बगलगीर हो गए। शाहनवाज का दिल फिर भावोद्रेक में डूब डूब गया। इस मेरे यार पर तो मेरी जान भी कुर्बान है, इसे कोई हाथ लगा कर तो देखे, उसकी चमड़ी उधेड़ दूं। भाभी बाहर जाने को हुई तो शाहनवाज ने उसे रोक लिया। कहाँ जा रही हो भाभी, मैं खाना वाना नहीं खाऊंगा। क्यों, खाना क्यों नहीं खाओगे? यह तो बोलता ही रहेगा जानकी, तुम खाना तैयार करो, रघुनाथ बोला। जा जा, भिंडी खिलाएगा, मैं भिंडी नहीं खाता। भाभी मेरे लिए कुछ नहीं बनाना। पर जानकी जा चुकी थी। उसने पीछे से आवाज़ दी, खुदा कसम भाभी मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मुझे जल्दी जाना है, मैं 2 मिनट के लिए आया हूँ। खाना नहीं खाओगे, चाय तो पियोगे? भाभी कमरे की दहलीज पर लौट गई थी। यह तो मैं पहले से जानता था तुम खाना नहीं खिलाओगी, पर लाओ तुम चाय ही पिला दो। दोनों दोस्त बैठ गए। रघुनाथ ने गंभीर आवाज में कहा, बहुत गड़बड़ है, दिल को बड़ा दुख होता है, भाई भाई का गला काट रहा है। पर सहसा इस वाक्य से दोनों के बीच एक तरह की दूरी सी पैदा हो गई। उनके आपसी रिश्ते की बात और थी, हिंदू मुसलमान के रिश्ते की बात दूसरी थी। इस वाक्य से रघुनाथ ने मानो निजी रिश्ते के साथ जातियों के रिश्ते को जोड़ने की कोशिश की थी, जिसके बारे में दोनों के अपने अलग अलग विचार थे। सुना है गांव में भी फसाद शुरू हो गए हैं, रघुनाथ ने कहा, पर इस विषय पर अधिक वार्तालाप की गुंजाइश नहीं थी। दोनों अटपटा सा महसूस करने लगे। यह विषय उनके हार्दिक वार्तालाप पर कोहरे की चादर सा बिछा गया था। ओ याबू, तू अपनी बात कर, शाहनवाज ने विषय बदलते हुए कहा। जानता है कल मेरी किससे मुलाकात हो गई? भीम से, शाहनवाज ने चहक कर कहा। कौन सा भीम? रघुनाथ ने पूछा और फिर दोनों ठहाका मारकर हंस पड़े। भीम उनका लड़कपन का सहपाठी रहा था और किसी छोटे से डिप्टी असिस्टेंट सिटी पोस्टमास्टर का बेटा था और इसी नाम से अपना परिचय दिया करता था। इसी कारण सभी दोस्त उसका मजाक उड़ाया करते थे। यहीं रहता है काफिर, 2 साल से कभी मिला ही नहीं, शाहनवाज ने कहा और शाहनवाज फिर ताली बजाकर हंस दिया। मैंने दूर से ही उसे पहचान लिया। मैंने जोर से कहा, डिप्टी असिस्टेंट सिटी पोस्ट मास्टर साहेब। कमबख्त खड़ा हो गया पर मिला बड़े प्यार से। भाभी चाय ले आई थी, मेज पर रखते हुए बोली, मुझे आपसे एक काम है खान जी। भाभी की याद आने से दोनों को इत्मीनान हुआ। फसादों के बारे में बात करते समय दोनों अटपटा महसूस करते थे और मिल बैठे और इस भयानक स्थिति की चर्चा न करें यह अभी अटपटा लगता था। बचपन के मजाक और हंसी मजाक भी इस परिप्रेक्ष्य में कुछ कुछ खोखले लगने लगे थे। कहो न भाभी, अगर तकलीफ न हो तो तभी। तुम कहाँ कहो भी। मेरे और मेरी जेठानी के जेवरों का एक डिब्बा घर में पड़ा है, वह निकलवाना है। जब आए थे तो थोड़ा सा सामान लेकर चले आए, मैं कुछ भी साथ नहीं लाई। इसमें क्या मुश्किल है भाभी, छोटा सा तो काम है, कहाँ रखे हैं? और छत्ती वाली कोठरी में। शाहनवाज उनके घर के कोने कोने से परिचित था। दोस्तों में यही एक दोस्त घर के अंदर आ सकता था, उस पर तो ताला चढ़ा होगा, इतना बड़ा सिक्के का ताला। मैं चाबियां देती हूँ, मैं जगह भी समझा दूंगी, निकाल लाऊंगा, आज ही निकाल लाऊंगा। मिल्खी वहां पर होगा, वह ताला वाला खोल देगा। मिल्की वहीं पर है, मैं सुबह उस तरफ चक्कर लगा आया हूँ, उसे खबरदार करता रहता हूँ। खाना वाना कहाँ खाता है? सारा घर उसके पास है, वही रसोई घर में खाना बना लेता होगा, और क्या? रघुनाथ बोला। रसद तो इतनी है कि 6 महीने तक खाए तो खत्म नहीं होगी, रघुनाथ की पत्नी ने कहा। फिर शाहनवाज की ओर देखकर बोली, फिर लाऊं चाबियां? शाहनवाज फिर भाव को उठा, उसे फिर गर्व का भास हुआ। हजारों के जेवर की चाबियां भाभी मेरे हाथ में दे रही हैं, मुझे अपना समझती हैं, तभी तो। भाभी चाबियां खनकाती ले आई। और जो मैं तुम्हारा जेवर हजम कर जाऊं तो? भाभी तुमसे जेवर अच्छा है खान जी, तुम उसे फेंक भी आओ तो मैं सी नहीं करूंगी, मैं कहूंगी तुम्हारी बला से। और फिर गुच्छों में से चुन चुन कर चाबियां दिखाने और समझाने लगी। थोड़ी देर बाद शाहनवाज जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। दोनों दोस्त बाहर आए और चुपचाप चलते हुए मोटर तक आ गए। किस मुंह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं शाहनवाज, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। रघुनाथ के दिल से अपने आप ही जैसे कृतज्ञता के शब्द निकल आए थे। ओह चुप ओए कराड, शाहनवाज ने कहा, जा घर जाकर बैठ, टट्टी कर, उसने कहा और मोटर का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया। रघुनाथ ठिठका खड़ा रहा। जा ना जा, इधर मेरा मगज क्यों चाट रहा है? रघुनाथ फिर भी खड़ा रहा, उसने हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया। जा ना अब जा ना, मेरा हाथ गंदा नहीं कर, जा किसी वाकिफ से बात कर, जा जा, क्यों खड़ा मगज चाट रहा है? तेरे जैसे बहुत देखे हैं। और शाहनवाज ने मोटर चला दी। दोपहर ढल चुकी थी जब जेवरों का डिब्बा लेने शाहनवाज रघुनाथ के पुश्तैनी घर पर पहुंचा। मिल्खी ने दरवाजा देर से खोला। कौन है जी? खोलो दरवाजा, मैं हूँ शाहनवाज। कौन जी? खोलो खोलो, मैं शाहनवाज हूँ जी। आया जी, अंदर से ताला लगा है जी, अभी लाता हूँ जी। चाबी अंगीठी पर रखी है। सड़क के पार फिरोज खाल वाले का गोदाम था। फिरोज अपने गोदाम के चबूतरे पर खड़ा खालों की दो गांठों को ठिकाने लगा रहा था। शाहनवाज ने उस ओर देखा तो अद्भुत की तरह खड़ा शाहनवाज की ओर देखे जा रहा था। शाहनवाज ने मुंह फेर लिया पर उसे लगा जैसे अभी भी फिरोज उसकी ओर नफरत से देखे जा रहा था। आज भी हिंदुओं के घर का दरवाजा खटखटा रहे हो? मानो वह मन ही मन कह रहा था। एक तांगा पास से गुजरा, शाहनवाज ने घूम कर देखा। चौधरी मौलादाद अपनी अनोखी पोशाक पहने, बिरजिस और गले में हरे रंग का रेशमी रुमाल खुले तांगे में मुसलमानी इलाके की गश्त लगा रहा था। शाहनवाज को देखकर वह हंस दिया और हाथ जरूरत से ज्यादा ऊंचा उठाकर सलाम अलैकम कहा। शाहनवाज को झेप हुई और नौकर पर गुस्सा आया कि वह क्यों दरवाजा खोलने में देरी लगा रहा है। अंदर ताला खुलने की आवाज आई। फिर मिल्की ने धीरे से दरवाजे का पल्ला थोड़ा सा सरकाया और शाहनवाज को देखकर बत्तीसी निपोरने लगा। शाहनवाज ने पैर की ठोकर से दरवाजा खोल दिया और अंदर चला गया। बंद कर दो दरवाजा। जी खान जी। घर का अंधेरा बरामदा लांघते हुए उसे स्निग्धता का भास हुआ। इस अंधेरे बरामदे में वह बहुत दिन बाद आया था। घर की सुपरिचित महक उसे अच्छी लगी। वर्षों पहले जब वह रघुनाथ के साथ बरामदा लांघ कर अंदर आया करता था तो उसकी छोटी बेटी मुंह में उंगली दबाए देर तक उसकी ओर ताकती रहती थी, फिर दोनों बाहें उठा देती थी कि मुझे गोद में उठा लो। हर बार वह आता तो वह भागती हुई बरामदे के सिरे पर आ जाती थी और दोनों बाहें उठाकर हंसने लगती थी। इसी बरामदे को लांघते समय घर की जवान औरतें दरवाजे की ओर से अंदर भाग जाया करती थीं। यह भी वर्षों पहले की बात थी जब रघुनाथ शुरू शुरू में उसे अपने घर लाने लगा था। उन हंसती औरतों में से किसी की नज़र शाहनवाज पर पड़ जाती तो वह भागना छोड़कर रुक जाती। हाय, आप हैं? मैंने सोचा न जाने कौन है। शाहनवाज का दिल भर आया। इस घर में उसने रघुनाथ और उसके परिवार के साथ बड़ी अच्छी शामें बिताई थीं। यहाँ आते ही रघुनाथ के छोटे भाई की बहू उसके लिए अंडों का आमलेट बनाने चली आती थी। घर के सभी लोग जानते थे कि शाहनवाज को आमलेट खाना पसंद है और धीरे धीरे घर के सभी लोग आंगन में आकर बैठने लगे थे। खान जी, घर के सब लोग सुख से हैं न जी? मिल्खी ने हाथ जोड़कर पूछा। तभी शाहनवाज का ध्यान मिल्खी की ओर गया। मिल्खी हाथ जोड़े घिघियाता सा सामने खड़ा था। मिल्खी की गंदली आंखें और बातें करने का गिड़गिड़ाहट भरा ढंग और पिचका हुआ शरीर उसे कभी भी पसंद नहीं आया था। इस वक्त भी मिल्खी की आंखें गंदली थी। कभी कभी घर के सभी लोग मिलकर मिल्खी से मजाक करते तो वह शर्मा कर बाहों से अपना मुंह ढक लेता, बिल्कुल औरतों की तरह, तो सभी खिलखिलाकर हंसने लगते। तब वह शाहनवाज को बुरा नहीं लगता था, पर आम तौर पर वह उसे लसलसी छिपकली सा लगा करता था। न जाने मिल्की कहाँ से आया था, न पंजाबी था न गढ़वाली। अपने घिसे पीटे छोटे छोटे दांतों के बीच से किसी खिचड़ी भाषा के शब्द पीस पीस कर निकालता था। आंगन के ऐन बीचों बीच तीन ईंटें रखकर मिल्खी ने अपना चूल्हा बना रखा था। उसकी राख आंगन में जगह जगह बिखरी थी, पर इससे भी ज्यादा बीड़ियों के टुकड़े जगह जगह पड़े थे। तू रसोई घर के अंदर अपनी हाँड़ी क्यों नहीं पकाता? शाहनवाज ने पूछा। मिल्खी सिर टेढ़ा करके मुस्कुरा दिया। अकेला हूँ साहेब जी, यहीं पर अपनी दाल चढ़ा लेता हूँ। रसद काफ़ी है ना? किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? बहुत है खान जी। साथ वाला नान भाई है ना, वो अभी रोज पूछ लेता है। आप ही उसे बोल कर गए थे। कौन सा नान भाई? साहिब जो नाले के पास बैठता है, वह मुझे बीड़ी के पैकेट भी फेंक देता है। बहुत भला आदमी है। और मिल्खी खी खी करके हंस दिया। आंगन के अंदर से ऐन रसोई घर की बगल में से सीढ़ियां ऊपर को चली गई थीं। शाहनवाज ने सीढ़ियों पर पैर रखते हुए आंगन में देखा। बड़े कमरे का दरवाजा जो आंगन में खुलता था बंद पड़ा था। कमरे के अंदर क्या है वह एक एक चीज को जानता था। अंगीठी पर रघुनाथ की माँ का चित्र रखा है। कमरे में दो खाटें और एक ऊंचा पलंग बिछे हैं। बंद दरवाजे को देखते हुए उसे बड़ा सूना सूना लगा। बंद दरवाजे के बाहर दहलीज के साथ मिल्की की चिलम उल्टी पड़ी थी। पास में मैला सा कपड़े का चिथड़ा पड़ा था। तो यहाँ बैठा क्या करता है रहता है? फर्श भी नहीं बुहारता? अब क्या बुहारना साहिब जी, अब तो वे चले गए। मिल्खी ने बत्तीसी निपोरते हुए कहा। शाहनवाज को लगता कि जब वे बातें करते हैं तो जैसे गुंबद में से आवाज आती है और जब वे बोल चुकते हैं तो फिर चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। असबाब वाली कोठरी बीच वाली छत पर है ना? जी, इधर सीढ़ियों के सामने जहाँ बड़े ट्रंक रखे हैं। और मिल्खी शाहनवाज के पीछे पीछे सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। चाबियों के गुच्छे में कुछ नहीं तो 15 चाबियाँ होंगी। कुछ एक छोटी छोटी पीतल की चाबियां थीं। भाभी ने पहले बड़े ताले की चाबी अलग करके दिखाई थी, फिर अलमारी के ताले की छोटी सी पीतल की चाबी दिखाई थी। यह चाबी है खान जी, भूलना नहीं। पर शाहनवाज को चाबी ढूंढने में दिक्कत हो रही थी। इस बड़े ताले की कौन सी चाबी है, तुम्हें कुछ मालूम है? हाँ साहेब जी, मैं बताऊंगा। और मिल्खी चाबियों के गुच्छे पर झुककर यूं ढूंढने लगा जैसे कोई मुनीम बही पर झुककर आंकड़े पढ़ता है। ले देकर मिल्खी शाहनवाज की कोहनी से कुछ ऊपर तक आता था। शाहनवाज को पगड़ी के नीचे से मिल्खी की चुटियां झांकती नजर आईं। बाएं कान के ऐन ऊपर कान खजूरे की तरह निकली हुई थीं। शानवाज को झुरझुरी सी हुई। मिल्खी ने ताला खोल दिया। कोठरी के अंदर घुटन थी और अंधेरा था। मिल्खी ने आगे बढ़कर कोठरी की एक खिड़की खोल दी जो घर के पिछवाड़े की ओर खुलती थी और जहां से एक मस्जिद का पूरा आंगन नजर आता था। खिड़की खुल जाने से कोठरी के अंदर रखी सभी चीजें साफ नजर आने लगीं। कोठरी में घुटन थी पर उससे अधिक औरतों के कपड़ों की महक थी। तीनों भाइयों की बीवियां लगता था घर छोड़ने से पहले जैसे तैसे अपने कपड़े लपेटकर कोठरी में ट्रंकों के ऊपर फेंक गई थीं। कोठरी संदूकों और ट्रंकों से ठसाठस भरी थी। ट्रंकों के बीच से अपना रास्ता बनाते हुए वह उस आलमारी तक जा पहुंचा जिसमें जेवरों का डिब्बा रखा था। तभी उसकी नज़र खुली खिड़की से मस्जिद के आंगन में पड़ी। वजू करने के ताल के पास बहुत से आदमी बैठे थे। लगता था उनके बीच किसी आदमी की लाश रखी थी। उसकी आंखों के सामने उस जनाजे का दृश्य भी घूम गया जब मोटर में वह रघुनाथ के घर की ओर जा रहा था। देर तक शाहनवाज खिड़की में से मस्जिद की ओर आंखें लगाए रहा। डिब्बा निकालने में देर नहीं लगी। नीली मखमल से ढका डिब्बा जो घर की किसी स्त्री का श्रृंगार बक्स था उसने बड़े एहतियात से निकाल लिए और आलमारी को ताला लगा दिया। बाहर आने पर दोनों सीढ़ियां उतरने लगे। मिल्की के हाथ में चाबियों का गुच्छा था और वह आगे आगे उतर रहा था। डिब्बे को दोनों हाथों में उठाए शानवाज पीछे पीछे चला आ रहा था जब सहसा उसके अंदर भभूका सा उठा। न जाने ऐसा क्यों हुआ, मिल्की की चुटिया पर नजर जाने के कारण मस्जिद के आंगन के लोगों की भीड़ को देखकर या इस कारण कि जो कुछ हुआ पिछले 3 दिन से देखता सुनता आया था वह विष की तरह उसके अंदर घुलता रहा था। शाहनवाज ने सहसा ही बढ़कर मिल्की की पीठ में जोर से लात जमाई। मिल्की लुढ़कता हुआ गिरा और सीढ़ियों के मोड़ पर सीधा दीवार से जा टकराया। जब वह नीचे गिरा तो उसका माथा फूटा हुआ था और पीठ टूट चुकी थी क्योंकि जहां गिरा वहां से वह उठ नहीं पाया। शानवाज उसके पास से निकल कर आया तो मिल्की का सिर नीचे की ओर लटक रहा था और टांगे आखिरी दो सीढ़ियों से लटके रही थीं। शानवाज का गुस्सा जिसका कारण वह स्वयं नहीं जानता था बराबर बढ़ता जा रहा था। पास से गुजरते हुए उसका मन हुआ पैर उठाकर उसके मुंह पर दे मारे और कीड़े को कुचल दे पर सीढ़ियों के मोड़ पर उसे अपना संतुलन खो देने का डर था। नीचे आंगन में पहुंचकर उसने एक बार मिल्की की ओर देखा। मिल्की की आंखें खुली थीं और शाहनवाज के चेहरे पर ऐसे लगी थीं मानो बात उसकी समझ में भी न आ रही हो कि उसकी किस भूल से खफा होकर खान जी ने उसे मारा था। मिल्की के मुंह से गिरते समय घुटता सा शब्द निकला था पर जब मिल्की चुप था या तो भय से ही दम तोड़ गया था या बेहोश पड़ा था या फिर गर्दन की हड्डी टूट गई थी। शाहनवाज ने उसे वहीं छोड़ा। जेवरों का डिब्बा बगल में दबाकर वहां से निकल आया और बड़ा ताला जो पहले मिल्खी ने घर के अंदर लगा रखा था उसे घर के बाहर लगा दिया। उसी रात भाभी के हाथों में जेवरों का डिब्बा देते हुए शाहनवाज विचलित नहीं हुआ। डिब्बा हाथ में लेते समय भाभी की आंखें डबडबा आईं। भाभी का रोम रोम कृतज्ञता से भर उठा था। रघुनाथ अंदर ही अंदर उसके चरित्र उसके ऊंचे विचारों की प्रशंसा कर रहा था जिनके कारण आज के जमाने में जब चारों ओर आग की लपट उठ रही थी एक मुसलमान दोस्त उसके प्रति इतना निष्ठावान था। पर एक बुरी खबर भी लाया हूँ भाभी। क्यों, क्या चोरी हो गई है? नहीं, मिल्खी सीढ़ियों पर से बुरी तरह गिरा है और शायद उसकी कोई हड्डी टूट गई हो। पहले सोचा किसी डॉक्टर वाक्टर को बुलाऊं पर आजकल डॉक्टर मिलते कहाँ हैं। कल उसका कोई इंतजाम करूंगा। बेचारा, कहो तो उसे यहाँ डाल जाऊं। वहां अकेला कहाँ पड़ा रहेगा। मैं अपना कोई आदमी रखवाली के लिए छोड़ आऊंगा। पर भाभी और रघुनाथ दोनों ही इस सुझाव पर हिचकिचाए। वे स्वयं नए इलाके में अभी अजनबी थे। उनसे एक मरीज की देखभाल कहाँ होगी। अगर शाहनवाज के लिए डॉक्टर ढूंढना कठिन हो रहा है तो उनके लिए कहाँ संभव होगा। मैं इंतजाम कर दूंगा, शाहनवाज ने सिर हिलाकर कहा। कोई ना कोई इंतजाम हो जाएगा, ऐसी मुश्किल भी क्या है। भाभी इस बात पर भी शाहनवाज की कृतज्ञ थी और उसके ऊंचे प्रशस्त ललाट दमकते चेहरे को देख देख कर उसे लग रहा था जैसे वह किसी पुण्यात्मा के दर्शन कर रही है। अध्याय 11। देवदत्त नहा धोकर हाथ मलता हुआ अपने घर के सामने आ खड़ा हुआ। जब कभी वह हाथ मलता हो या दाएं हाथ से मुंह और नाक सहलाता हुआ फिर से दोनों हाथ मलने लगे तो समझ लो देवदत्त अपनी कार्य सूची तैयार कर रहा है। देवदत्त के दिमाग में डायरी थी। वह हाथ मलता नाक सहलाता डायरी में एक के बाद एक काम टांक रहा था। रत्ते वाले साथी से रिपोर्ट नहीं आ पाएगी। रत्ते में गड़बड़ है। किसी साथी को वहाँ भेजना होगा। साथियों की कमी है मगर जहाँ तक बन पड़े दंगों को रोकने का काम करना होगा। उसने फिर नाक पर हाथ फेरा फिर कलाई पर बंधी घड़ी देखी। कम्यून में 10 बजे मीटिंग है जिसमें साथी अपने अपने इलाके की रिपोर्ट देंगे। अब चलूँ। देवदत्त चुपचाप अंदर जाकर चुपके से बरामदे में से साइकिल निकालने लगा। कौन है? देवदत्त? देवदत्त ने साइकिल को छोड़ दिया और कमरे के अंदर चला गया। फिर कहीं जा रहे हो? खाट पर बैठा अधेड़ उम्र का स्थूल काय बाप बोला। मरना चाहते हो तो पहले अपने घर वालों को मार कर जाओ। देखते नहीं बाहर की क्या हालत हो रही है? देवदत्त दहलीज पर चुपचाप खड़ा हाथ मलता और नाक सहलाता रहा। माँ रसोई घर में से दुपट्टे के साथ हाथ मूंजती अंदर आई। तुझे क्या मिलता है हम लोगों को तड़पाने में? देखते नहीं कैसे हमने रात काटी है। उधर से आग उधर तुम रात भर गायब रहे। देवदत्त हाथ रगड़कर बोला। पीछे से मरी रोड तक और आगे से कंपनी बाग तक सारा इलाका हिंदुओं का है। चारों तरफ खाते पीते हिंदू लोग रहते हैं। आप लोगों को कोई खतरा नहीं। तुझे इल्हाम हो गया है कि हमें कोई खतरा नहीं। बाप घुर्रा कर बोला। इस लाइन में 10 घरों के पास बंदूकें हैं। इसी मोहल्ले के युवक सभा वाले 3 कत्ल कर चुके हैं। ओ उल्लू के पट्ठे, अपने खतरे के बारे में कौन सोच रहा है? हम तो तेरे खतरे के बारे में सोच रहे हैं। ऐसी खतरे की कोई बात नहीं। और देवदत्त फिर लौटकर बरामदे में आ गया और साइकिल निकालने लगा। माँ ने दुपट्टा गली में डाल दिया और उसका रास्ता रोकने लगी। सारी रात मैंने तड़प तड़प कर बिताई है। देखता नहीं कौन सा वक्त ऊपर आया है। मसला टेढ़ा हो रहा था। देवदत्त ने फिर नाक सहलाई हाथ मले और माँ के पास मुंह ले जाकर बोला। मैं जल्दी लौट आऊंगा तू चिंता न कर। मुझे चरकाता है? कल भी कह के गया था लौट आऊंगा। मेरे जिस्म को हाथ लगा के कह दिन ढलने से पहले लौट आएगा। लौट आऊंगा लौट आऊंगा कसमें मैं नहीं खाता। और वह साइकिल लेकर आगे बढ़ने लगा। अंदर से पिताजी की आवाज आई। यह हरामी नहीं मानेगा। क्यों सिर खपा रही है? यह हमें जलील करके रहेगा। सुअर का बच्चा। माँ बाप का ख्याल नहीं फसाद करने जा रहा है। हरामी कहीं का। देवदत्त साइकिल लेकर घर के बाहर आ चुका था। अंदर से आवाज़ बराबर ऊंची होती जा रही थी। सभी गालियाँ देते हैं न काम न धाम। दो दो पैसे के पाड़ियों मजदूरों कुलियों को इकट्ठा करता फिरता है। उन्हें लेक्चर झाड़ता फिरता है। हरामी मुंह पर दाढ़ी नहीं उतरी लीडर बन गया है। सुअर का बच्चा। देवदत्त चौक तक पहुंच चुका था। देवदत्त! चौक के बाएं हाथ से किसी ने आवाज़ लगाई। साइकिल पर बैठे बैठे जमीन पर पैर रखकर देवदत्त रुक गया। आगे मत जाओ। एक आदमी मरा पड़ा है। हाथ में लाठी उठाए गीठने कद का एक आदमी सड़क पर आ गया। कहाँ पर? चौक के पार ढलान पर। कौन है? मुसलमान है और कौन? तुम इस वक्त कहाँ जा रहे हो? मैं अपने काम से पार्टी ऑफिस जा रहा हूँ। एक हिंदू उस तरफ कब्रिस्तान में मरा पड़ा है। कहते हुए ठिगने कद के आदमी झुंझला कर कहा। तुम बड़ा मुसलमानों के हक में बोलते थे। अब उनसे जाकर कहो हमारी लाश ले जाएं अपनी उठा ले जाएं। दाएं हाथ ऊपर छज्जे पर से आवाज आई। मत जाओ वे लोग मार डालेंगे। यह मुसलमानों की बगल में घुसा रहता है इसे कोई नहीं मारेगा। है तो हिंदू? छज्जे पर से आवाज आई। जो लोग पहले छिप लुक कर काम करते थे अब बेधड़क बाहर आ गए थे। उनसे जाकर कह दो हमारा एक मरेगा हम उनके 3 मारेंगे। आदमी शायद मरा नहीं था सिसक रहा था। ढलान पर उसका शरीर थोड़ा नीचे खिसक आया था। उसकी दाढ़ी थी जो पहले खिचड़ी रही होगी अब खून के रंग की थी। खाकी कोट पर जिस्त के बटन थे सबसे सस्ते जो 1 पैसे के 8 आते हैं। जूतों के फीते खुले थे मानो अगले जहान जाने से पहले खुद ही खोल दिए हों। कोई कश्मीरी जान पड़ता था। देवदत्त ने मुड़कर सड़क की ओर देखा। सड़क के नाके पर एक टोली खड़ी थी और उसे घूरे जा रही थी। दूसरी बार लाश को देखने पर उसने पहचान लिया यह कश्मीरी हतो है जो फतेहचंद के टाल पर काम करता था। कोयला और लकड़ियां घर घर पहुंचाने वाला। फतेहचंद का टाल कुछ ही दूरी पर था। देवदत्त ने नाक सहलाई और सिर हिला दिया। यह वक्त इस आदमी को बचाने की कोशिश करने का या लाश ठिकाने लगाने का नहीं था, न ही हिंदू की लाश के दर्शन करने का था। यह वक्त पार्टी ऑफिस में पहुंचने का था। पार्टी ऑफिस में झंडे ही झंडे थे। आदमी ले देकर तीन बैठे थे। कम्यून में कुल 8 आदमी थे। इस समय 5 ड्यूटी पर थे। एक बुरी खबर भी थी। एक मुसलमान कामरेड का विश्वास टूट चुका था और वह कम्यून छोड़कर जा रहा था। अपनी बात कहते कहते उसके होंठ कांप कांप जाते थे और गुस्से से आग बबूला हो रहा था। अंग्रेज की शरारत, अंग्रेज की शरारत! इसमें अंग्रेज कहाँ से आ गया? मस्जिद के सामने सुअर फेंकते हैं, मेरी आंखों के सामने। 3 गरीब मुसलमानों को काटा है, हटाओ जी, सब बकवास है। देवदत्त बौखलाए हुए कामरेड को इतना ही कह पाया, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करो साथी, हम मध्यम वर्ग के लोग हैं, पुराने संस्कारों का हम पर गहरा प्रभाव है। मजदूर वर्ग के होते तो हिंदू मुसलमान का सवाल तुम्हें परेशान नहीं करता। पर साथी ने बुचका उठाया और कम्यून छोड़कर निकल गया। साथी का सैद्धांतिक आधार कच्चा है। जज्बात की रो में बहकर कोई कम्युनिस्ट नहीं बनता। इसके लिए समाज विकास को समझना जरूरी है। मीटिंग शुरू हुई। शहर की स्थिति पहला आइटम था। इसमें भी मजदूर बस्तियों पर विचार करना सबसे पहले जरूरी था। रत्ते में गड़बड़ की बात गलत है। किसी मजदूर बस्ती में अभी तक कोई गड़बड़ नहीं हुई। हाँ, तनाव पाया जाता है। साथी जगदीश मुसलमान मजदूरों की बस्ती में बैठा है। लोग अभी भी उसकी बात सुनते हैं। सिख मजदूरों के वहाँ 20 घर हैं। एक भी वारदात वहाँ भी अब तक नहीं हुई। लेकिन साथी जगदीश ने इत्तला दी है कि स्थिति बिगड़ रही है। 2 मजदूरों के बीच कल गाली गलौज हो गई थी। बाहर से आने वाली अफवाहें बहुत बुरा असर पैदा कर रही हैं। फैसला हुआ कि कुर्बान अली को भी रत्ते में भेज दिया जाए ताकि साथी जगदीश अकेला न रहे। और देवदत्त ने कागज पर फैसला आंक लिया। दारा गांव में जा चुके हैं, कोई खबर नहीं। आम दरख्त बंद हो चुकी है। केवल एक मोटर, गहरे नीले रंग की मोटर, गांव गांव जाती देखी गई है। किसकी मोटर थी, क्यों गई, कुछ मालूम नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि शाहनवाज की मोटर थी। मीटिंग देर तक चलती रही। तीनों कामरेड देर तक देवदत्त के साथ बैठे विचार करते रहे। कॉपी पर एक एक आइटम पेंसिल से टिक होता गया। फिर अंतिम आइटम सामने आया, सभी पार्टियों के नुमाइंदों की मीटिंग बुलाना। यह मीटिंग नहीं हो सकेगी, एक साथी बोला। कांग्रेस दफ्तर पर ताला चढ़ा है। लीग वालों से बात करो तो पाकिस्तान के नारे लगाने लगते हैं। वे हर बात में कहते हैं, पहले कांग्रेस वाले कबूल करें कि कांग्रेस हिंदुओं की जमात है, फिर हम उनके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। और इस वक्त तो अपने अपने मोहल्लों से कोई बाहर ही नहीं निकल रहा। मीटिंग किसके साथ करोगे? नाक फैलाते हुए देवदत्त ने फिर मत बदल लिया। 10-10 नुमाइंदों वाली बात नहीं चलेगी। चुनिंदा चुनिंदा लीडरों को ही जैसे तैसे इकट्ठा करो। उन्हीं के साथ कुछ लोग आ जाएंगे। कोई नहीं आएगा कामरेड, दूसरे साथी ने कहा। अगर जाएंगे भी तो तू तू मैं होगी, नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। कामरेड, उनके मिल बैठने से ही लोगों पर अच्छा असर पड़ेगा। फिर हम उनके नाम से शहर में अमन कायम करने की अपील कर सकते हैं। मोहल्ले मोहल्ले में उसकी मुनादी करवा सकते हैं। इस वक्त क्या है, इस वक्त फसाद और खुली मार काट नहीं हो रही। लेकिन जहाँ इक्का दुक्का आदमी मिलता है उसे काट दिया जाता है। उन्हें आपस में मिलाना निहायत ज़रूरी है। कुछ एक और पहलुओं पर विचार किया गया। कहाँ पर मीटिंग बुलाई जाए? फैसला हुआ हयात बख्श के घर पर। और मैं बख्शी जी को लाऊंगा। मुसलमानों के मोहल्ले में पहुंचने पर साथी अजीज मोहल्ले के 2-3 मुसलमान शहरियों को लेकर मिलेगा। और हम सब हयात बख्श के घर जाकर बैठेंगे। हयात बख्श के साथ बात कर ली है? अभी जाकर बात करूंगा। कामरेड, तुम किस दुनिया में रह रहे हो? हयात बख्श के घर पर तुम जाओगे? वहां तक तुम्हें पहुंचने कौन देगा? तुम मेरे साथ चलोगे, देवदत्त ने मुस्कुराकर अजीज से कहा। ये पानी के छींटे हैं कामरेड, इनसे यह आग नहीं बुझेगी। पर मीटिंग के बाद सचमुच देवदत्त और अजीज गलियां लांघते, छिपते लुकते, कहीं गालियां खाते, कहीं धमकियां सुनते हयात बख्श के घर जा पहुंचे। और सचमुच उस दोपहर को हयात बख्श के घर मीटिंग भी हुई। बख्शी जी को देवदत्त लाया, किसी और कांग्रेसी से देवदत्त कहता तो वह शायद नहीं आता। देवदत्त को विश्वास था कि बख्शी आएगा, क्योंकि वह कुल मिलाकर 16 साल जेल में रह चुका था। भले ही उसका जेहन साफ न हो, राजनीतिक गुत्थियां सुलझाने में वह असमर्थ हो, लेकिन वह खुरेंजी नहीं चाहता। वह तुनक तुनक कर पिछले दिनों में सबसे बोल रहा है, क्योंकि वह बौखलाया हुआ है, अंदर से परेशान है, स्थिति उसके काबू में नहीं है। देवदत्त के साथ आते हुए सारे रास्ते कम्युनिस्टों को गालियां देता रहा, पर वह आया था और उसके साथ दो जवान कांग्रेसी और भी आए और मीटिंग हुई और तू तू मैं भी हुई, और आधा घंटे तक हयात बख्श इस बात पर अड़ा रहा कि बख्शी कबूल करे कि वह हिंदुओं की नुमाइंदगी करने आए हैं, कि कांग्रेस हिंदुओं की जमात है। फिर देवदत्त ने कहा, साहिबान, यह मौका इन बातों में पड़ने का नहीं है। बाहर लोग मर रहे हैं, घर जल रहे हैं, सुनते हैं आग गांव में भी फैलने वाली है। इस वक्त हमारा फर्ज है, मैं गुजारिश करूंगा कि हम वक्त की नज़ाकत को समझते हुए इस आग को फैलने से रोकें। फिर देवदत्त ने अमन की अपील पढ़कर सुनाई, बहस फिर से छिड़ गई। यह कांग्रेस और लीग की तरफ से नहीं हो सकती, यह हयात बख्श और बख्शी जी की तरफ से हो सकती है। नहीं, इसमें और लोगों को भी शामिल किया जाए। फिर लोग थक गए और हयात बख्श के कान में उसके बेटे ने कहा कि अपील पर दस्तखत करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अमन की अपील ही तो है। तो उसने दस्तखत कर दिए, बख्शी जी ने भी दस्तखत कर दिए। फिर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, और इन्हीं नारों के बीच बख्शी जी अभी जूता पहन रहे थे कि खबर आई कि रत्ते में मजदूरों की एक बस्ती में भी फसाद हो गया है और दो सिख बड़े ही मार डाले गए हैं। पहले तो देवदत्त ने खबर को झूठ कहा, मानने से इनकार कर दिया। वहां पर दंगा आपने देखा है अपनी आंखों से? कौन खबर लाया है? यह वाक्य तो वह अंत तक दोहराता रहा, पर उसका सिर झुक गया और उसे लगा कि अगर मजदूर आपस में लड़ सकते हैं तो यह विष बहुत गहरा असर कर चुका है। तो फिलहाल इस मीटिंग को पानी पर खींची लकीर की लकीर ही समझना चाहिए। और तभी देवदत्त ने मन ही मन फैसला किया कि दफ्तर से साइकिल उठाओ और सीधे रत्ता पहुंचो, जैसे भी हो रत्ता पहुंचो। अकेले साथी जगदीश की बस की यह बात नहीं रह गई है, मेरे पहुंचने से शायद स्थिति बेहतर हो जाए, मजदूर आपस में न लड़ें। पर जब देवदत्त जैसे तैसे दफ्तर में पहुंचा तो उसका बाप वहां पहले से मौजूद था, हाथ में छड़ी उठाए। और जब देवदत्त ने स्थिति का मार्का विश्लेषण किया और बताया कि दंगा रोकने की कोशिश जारी है और फिर साइकिल निकालने लगा, तो उसका बाप बिफर उठा, उल्लू के पट्ठे, हरामी, कोई मार डालेगा तो लाश उठाने वाला भी नहीं मिलेगा। तू देखता नहीं वक्त कैसा जा रहा है? हरामी, तू अकेला दंगा रोकने जा रहा है? और बाप ने गली में खुलने वाला दरवाजा बंद कर दिया। उसका मन चाहता था बेटे को धुन दे। उसने छड़ी उठाई भी, पर फिर दहाड़ मार कर रो पड़ा, क्यों हमें रुला रहा है? हमारा तू एक ही बेटा है, कुछ समझ से काम ले, कुछ अकल कर। देख तेरी माँ कितनी परेशान है, तू कहता है तो पगड़ी तेरे पैरों पर रख देता हूँ, चल घर। देवदत्त ने नाक सहलाई, हाथ मले, उस स्थिति टेढ़ी हो रही थी। किसी को बीच में डालना होगा, इन्हें घर तक पहुंचाना होगा। मुझे रत्ता जाना है, वह बोला, मैं रुक नहीं सकता, पर मैं आपको घर पहुंचाने का इंतजाम किए देता हूँ, साथी रामनाथ आपके साथ जाएगा। उसी दोपहर एक और मौत हुई, जर्नैल मारा गया। सनकी तो वह पहले ही था, बगल में छड़ी दबाए लेफ्ट राइट करता हुआ दंगा रोकने निकल पड़ा। कोई नहीं जानता कि उसके मन में कोई विचार उठते थे या नहीं, पर दिल में वलवले जरूर उठते थे और कदम जरूर उठते थे और दिमाग में शायद सनक उठती थी, शहर में दंगा हो रहा है, यह क्या कोई अच्छी बात है? और वे सभी कांग्रेसी गद्दार हैं जो घर पर बैठे हुए हैं। वह निकला और जगह जगह सड़क के किनारे कभी एक चबूतरे पर तो कभी दूसरे चबूतरे पर खड़ा होकर लेक्चर देने लगा, एक चबूतरे से दूसरे चबूतरे पर, गलियां, सड़कें, इलाका व कमेटी मोहल्ले में जा पहुंचा। उधर दिन ढल रहा था, वह वाज कर रहा था जब कुछ मनचले आकर खड़े हो गए थे। जर्नैल को कुछ मालूम नहीं था वह किस मोहल्ले में है, कहाँ है। साहिबान, मैं आपसे कहता हूँ कि हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं, शहर में फसाद हो रहा है, आगजनी हो रही है और उसे कोई रोकता नहीं। डिप्टी कमिश्नर अपनी मेम को बाहों में लेकर बैठा है और मैं कहता हूँ कि हमारा दुश्मन अंग्रेज है। गांधी जी कहते हैं कि वही हमें लड़ाता है और हम भाई भाई हैं। हमें अंग्रेजों की बातों में नहीं आना चाहिए, और गांधी जी का फरमान है कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। मैं भी यही कहता हूँ कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। हम एक हैं, हम भाई भाई हैं, हम मिलकर रहेंगे। तेरी माँ की, आसपास खड़े लोगों में से एक ने कहा, और लाठी की एक ही भरपूर वार से जर्नैल की खोपड़ी फोड़ दी। छड़ी कहाँ गई और फटी हुई मूंगियाँ, पगड़ी कहाँ गई और फटी हुई चप्पलें कहाँ गईं, और फिकरा खत्म किए बिना ही जहाँ जर्नैल खड़ा था वहीं ढेर हो गया।